ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. अगर हम चाहें ना तो इनकी तो आंखें भी मूंद दें, इनकी आंखें ना पैद कर दें, इनकी आंखें ही ना रहें, बस फ्लैट स्किन हो उसकी जगह। ये बड़ी सख्त बात है इंसान के लिए। दुनिया में अल्लाह ताला दुनिया में भी कादिर है इस बात के ऊपर। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये क़यामत के दिन की बात है, बाज़ ने कहा यह दुनिया की बात है। ये क़यामत के दिन भी अल्लाह चाहे तो उनकी आंखों को मिटा दे कि आगे पुल सिरात है जिसके ऊपर से गुजरना है, इनको कुछ नजर ही नहीं आएगा तो कैसे गुजरेंगे, फिर जन्नत में कैसे जाएंगे, वहां पे अंधे हो जाएं। और आपको पता है ना सूरह तौहा में हमने पढ़ा था कुछ लोगों को अल्लाह ताला कयामत के दिन अंधा उठाएगा, वो कहेंगे या अल्लाह हम अंधे कैसे हो गए, हम तो दुनिया में देखते थे। अल्लाह ताला फरमाएगा क्यों तुम मेरे जिक्र के साथ अंधे रहे दुनिया के अंदर, तो आज मैंने तुम्हें अंधा कर दिया। ये जिक्र इस कुरान से अंधे बन के जो रहना है ना, इसकी ये सजा है कि रखे हुए घरों के अंदर सजा सजा के, और ना इनको सीखना ना समझना ना इनको पढ़ना। कितने लोग हैं आज जो समझते हैं, अंधे बन के रह रहे हैं इससे। चाहे जितना मर्जी कहते रहे हम मानते हैं, मानने का क्या फायदा जब उसे अंधे बने में, और अंधे बनने का मतलब क्या होता है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना जैसे है ही नहीं। हम कभी तब कहते हैं ना अंधे हो गए हो क्या, किसी चीज से टकराता है कोई तो, यानी उसने देखा ही नहीं उसको, तवज्जो ही नहीं की उसकी तरफ। तो आज के हालात ये हो चुके हैं कि अंधे बन चुके हैं कुरान से। तो ऐसे लोग सोच लें कि कयामत के दिन ये गवारा करेंगे कि वहां पे अंधे खड़े हो जहां पे सबसे ज्यादा आंखों की जरूरत होगी, क्योंकि अफरा तफरी है कोई कयामत के दिन कोई किसी अंधे को हाथ पकड़ के लेके नहीं चलेगा कहीं, कयामत के दिन कोई हेल्प नहीं करेगा। दुनिया में अंधे के साथ कोई फिर भी हमदर्दी कर लेता। और दूसरा माना कि दुनिया में ही अल्लाह ताला उनको अंधा कर दे, क्या मतलब है कि यानी यहां पे या तुम्हें आंखें दी हुई हैं लेकिन अगर तुम इन आंखों से फायदा नहीं उठाओगे, इससे अल्लाह ताला की कुदरत को उसकी अजमत को नहीं पहचानोगे, तो अल्लाह ताला चाहे तो ये सलाहियत ही तुम्हारे से ले ले अगर तुमने इसको यूज नहीं करना। देखें ये आजा अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिए हुए, इसलिए नहीं कि हम दुनिया को देख के एंजॉय करके और यहां से चले जाएं, इसलिए दिए हुए कि इससे रब को पहचानो, चाहे वो आंखें हैं चाहे कान है चाहे दिल है, इसीलिए इनसे मसूलियत होगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया आंखों से भी कान से भी दिलों से भी सवाल किया जाएगा, इसीलिए सवाल किया जाएगा ना कि ये मैंने तुम्हें दिए थे इसलिए तो नहीं दिए थे जो तुम इनके साथ करके आए हो। सारा सारा दिन इंटरनेट पे, सारा सारा दिन टीवी देखते रहना, सारा सारा दिन इधर उधर घूमते रहना, हर चीज देख रहे हैं, एक अल्लाह की कुदरतों को ही नहीं पहचान रहे। दिल दिमाग पे हर चीज और बाकी छाई भी है, उसकी फिक्रें भी हैं, किसी चीज के शौक हैं, किसी चीज के मजे हैं, किसी चीज की सोचे हैं, एक सोच नहीं है तो अल्लाह ताला के बारे में, उसके दीन के बारे में, उसके कुरान के बारे में ये सोच है ही नहीं, उस पर कोई गौर व फिक्र ही नहीं, ना उस रब की पसंद को जानना ना नापसंद को जानना, ना ये देखना सिराते मुस्तकीम क्या है, हमने किस पे चलना है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों दुनिया में है, किसी चीज पे भी नहीं गौर व फिक्र तुमने करना। तो दिल इसलिए तो नहीं दिए हुए थे कि तुम दुनिया जहान की मामलात को इस दिलों में बसा लो, और बाकी नहीं जानना तो ये ही नहीं जानना कि एक रब है और उसकी मान के चलना। कान इसलिए तो नहीं दिए थे कि म्यूजिक सुनते रहो, लोगों की चूनिया कीमतें सुनते रहो, सारा सारा दिन इधर उधर की बातें, इधर की कभी उधर की बस सुनते रहो, और एक अल्लाह की बात है तुम्हारे कानों पे बोझ बन जाए, तो अल्लाह ताला चाहे तो इन आंखों को वापस ले ले। ये ऐसे ही है ना, आप अपने बच्चे को सेलफोन देते हैं, आईपैड देते हैं, किस लिए, आप स्कूल का काम इस पे करोगे। अब आप उसको देख लेते हैं मिसाल के तौर पर किसी दिन कि खुदा ना हास्ता वो किसी गलत वेबसाइट पे है, किसी बुरी जगह पे, आपने उसको पकड़ लिया, तो अब आप उससे वापस ले लेते हो। अब वो कहे दिस इज नॉट फेयर, आपने मुझसे क्यों लिया, ये तो मेरी चीज है। नहीं, आपने उसको दी थी, अब आप उसको किसी वक्त भी वापस ले सकते, आपने देखा ये सही नहीं यूज कर रहा, अब तुम्हें ये नहीं मिलेगी। हम ऐसे करते हैं ना, हम इसका हक समझते हैं कि हम कर सकते हैं, हमने ही दी थी। तो अल्लाह ताला ने ये नेमते हमें किसी चीज के लिए दी हुई है, अगर इनको इस पे ही इस्तेमाल नहीं करना, اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا نہیں کہ آپ دنیا کو نہ دیکھو، بلکہ فرمایا کہ ہاں دیکھو تم، بلکہ کائنات دیکھو، اس میں غور کرو، اس سے اللہ کو پہچانو. یہ نہیں کہا آنکھیں بند کر کے پڑے رہو. دیا تمہیں، تم اپنے پیاروں کو بھی دیکھو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی دیکھو، تم اس کی کائنات کو بھی دیکھو، تم اس کے قرآن کو بھی دیکھو، کوئی حرج نہیں، سب چیزیں دیکھو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کو ہی نہ پہچانو ان سب سے، تو پھر تو تم نے اس کا حق نہیں ادا کیا. کس لیے تمہیں یہ دی گئی تھی؟ تو ہم چاہیں تو ان کو واپس مون دیں، پھر یہ بھاگتے پھریں دوڑیں راستے کے لیے، تو ان کو راستہ ہی نظر نہیں آئے گا. قیامت کے دن کا دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی راستہ نہیں نظر آئے گا. تلاش کریں گے کس طرح ہم بھی جنت میں پہنچے، نہیں جا سکتے. اگر اللہ چاہے تو، اللہ نے موندی نہیں ہے، اللہ نے لی نہیں ہے، لیکن یہ ایک دھمکی ہے ان کے لیے، اگر اللہ چاہے تو واپس لے لے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ نہیں لیتا. اور وہاں پہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے منہ بند کر سکتا، تو اس دن اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی بند کر سکتا، وہ بھی موند سکتا. اور انسان کا یہ حق نہیں وہ پھر یہ کہے انا میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی، میری آنکھیں کیوں واپس چلی گئی، میری بینائی کہاں چلی گئی، دس از ناٹ فیئر. نہیں، جس نے دی ہیں وہ جب چاہے لے لے، اسی نے دی ہیں نا، ہمارا کوئی حق تو نہیں، ہم خود تو نہیں لے کر آئے. اگر ہماری چیز ہے نا تو پھر روک کے دیکھ لے. تو بتا دیا گیا کہ اگر باز نہیں آتے نا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان آنکھوں کو مٹا دے. اور انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر انسان کی آنکھیں مٹ جائیں، اس کی دنیا اندھیر ہو جائے، پھر بھی انسان ڈرتے نہیں ہیں. یہ تو اس کا کرم ہے، وہ نہیں کر رہا، ڈرتے نہیں ہیں پھر بھی ہم، کہ ہم پھر ہی کوئی یہ اتنی بڑی دھمکی سن کے خوف زدہ ہو جائیں اور سوچیں کہ اللہ اگر تو نے میری آنکھیں مون دی تو میں کیا کروں گی، اور ڈر کے ہی اس طرف کو آ جائیں کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں، میں ان آنکھوں کو حرام کے لیے استعمال نہ کروں، میں ان آنکھوں سے اپنے رب کو پہچانوں. اور اگر اللہ چاہے ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، یہ بھی اتنی بڑی دھمکی، اگر اللہ چاہے تو مسخ کر دے ان کو ان کی جگہوں پہ، بدل دے. آپ دیکھ لیں انسان کی، وہ جب میں نے آپ کو جیسی اگزامپل دی کہ مسخ شدہ لاش جب کہتے ہیں نا، یعنی وہ اب اس کا حال حلیہ بالکل بدل گیا، وہ تو ویسی رہی نہیں، مسخ ہو گئی ہے. تو انسان بھی مسخ کر دیے گئے. دیکھیں پہلے زمانوں میں جن قوموں کے اوپر عذاب آیا، جیسے اصحاب السبت جو تھے، سیٹرڈے والے جو جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں، ان کو بندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ایک قوم کو خنزیر بنا دیا. تو اللہ چاہے تو آج بھی بنا دے کسی کو، اللہ چاہے جہاں پہ تم بیٹھے وہیں پہ تمہاری صورتیں مسخ کر دے. فَمَسْتَطَعُوا مُضِيًّا، پھر تو وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے گزرنے کی، چلنے کی. وَلَا يَرْجُونَ، اور نہ وہ پلٹ سکیں گے، نہ ان کی صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ پھر اس چیز کو واپس لے آئیں یا واپس پلٹ سکیں، یہاں سے چلے جائیں، بھاگ جائیں کہیں، بچ جائیں اس سے. نہیں، واپس لانے کی بھی قدرت نہیں ہوگی انسان میں اگر اللہ مسخ کر دے. اور ایک ایسا وقت آئے گا قیامت سے قریب کہ اللہ تعالیٰ مسخ کر دے گا صورتوں کو، جس وقت شراب کو حلال کر دیا جائے گا اور گانے بجانے کے، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ چاہے تو اب بھی کر دے ایسا، نہ چہرہ یہ رہے، نہ جسم یہ رہے، نہ چل سکیں، نہ پیچھے پلٹ سکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت حال کو ذرا سوچو اور پھر دیکھو کہ تم اپنی زندگیاں کس میں گزار رہے ہو، تم اپنی ساری انرجیز، ساری طاقت اپنی کدھر لگا رہے ہو، کدھر بھاگ بھاگ کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. لیکن انسان کو ہوش آتا ہی نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں یا غفلتوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور زندگی گزرتی جا رہی ہے اور اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا جب تک کہ زندگی ختم نہیں ہونے والی ہو جاتی. اگر پتھر بنا دے وہ بیٹھے بیٹھے، اب وہ پومپے کی قوم تھی نا، اس کے اوپر لاوا آیا اور جیسے جن گناہوں میں تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی ان کے امیجز، تصویریں دیکھی ہیں اس میں کہ لاوا آ گیا اور جو زنا کر رہا تھا وہ اسی حالت میں پتھر بن گیا، جو غلط کام کر رہا تھا وہ اسی حالت کے اندر پڑا ہوا.
अल्लाह ताला चाहे तो वहीं के वहीं इंसान को पत्थर का बना दे, कौन रोक सकता है। तो बताया जा रहा है कि ये अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है। अगर तुम उसकी तरफ नहीं आते, उसको नहीं पहचानते, उसके लिए नहीं फरमा बरदारी इताअत का रास्ता इख्तियार करते, आजी नहीं करते, अकड़े रहते हो, अपनी मनमानियां करना चाहते हो, तो अल्लाह चाहे तो ये कर दे। मैंने जो आपको बच्चे की मिसाल दी है, बच्चे की और फोन की, उसी के ऊपर रख के अपने आप को देख लें कि मेरा शिकायत नहीं इंसान कर सकता कि क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ। वमन नुअम्मिर नुनक्किसु, और जिसको हम उम्र देते हैं हम उल्टा देते हैं उसको। अब यहां पे बता दिया गया कि ये अल्लाह के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है तुम ये करना कि किसी की आंखें मिटा दे या किसी को उसकी जगह पे ही मसख कर दे, इसलिए कि ऐसा तो तुम देखते हो एवरी डे अपनी जिंदगी में देख रहे हो कि एक इंसान जवान होता है और फिर कैसे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है हम उसको उल्टा देते हैं, उल्टा रिवर्स में चलना शुरू हो जाता है। उम्र बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं 60 का हो गया, 70 का हो गया, नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो रिवर्स में जा रहा है, वो बच्चा बेबी होने की तरफ जा रहा है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको हम उल्टा देते हैं। ये अल्लाह ताला करता है क्योंकि इंसान नहीं चाहता, फिल खल्क साख्त में उसको उल्टा हो जाता है। अफला याकिलून, तो बिना अकल नहीं आती, तुम देखते नहीं हो। और वाकई ये इतनी बड़ी निशानी है हमारे सामने। आप ऐसा करें, आपके सामने कोई बुजुर्ग हैं, कोई बूढ़े हैं, ये आपका होमवर्क है, आप उनसे कोई उनकी जवानी की तस्वीर मांगें, बहुत शौक से वो देंगे आपको, तो आप उनकी वो तस्वीर देखें और फिर वो जिस तरह से बुढ़ापे की हालत में आप 80-90 साल के हो गए, आप वो देखें, आपको ऐसा लगेगा मिलती जुलती शक्ल है लेकिन ये वो नहीं है, आपका दिल कहेगा वो नहीं है, अच्छा ये आप है, वो कहेगा हाँ ये मैं ही हूं, आपको यकीन नहीं आएगा ये वही इंसान है, वही लंबा चौड़ा स्ट्रेट खड़ा हुआ, और ये तो अब एक हंचबैक के साथ झुका हुआ और बिल्कुल नहीफ कमजोर सा, वो है आंखों में रोशनी है, बाल चमक रहे हैं, और ये सफेद बाल, आंखों की बिनाई भी आधी जा चुकी है, मोटा चश्मा लगा हुआ, वो क्या है जैसे एक्टिव एक इंसान होता है उसकी तस्वीर, और ये जैसे कुछ करने के काबिल नहीं। अल्लाह ताला वापिस इंसान को उस तरफ पलटा देता है जिस तरफ से उसने जिंदगी शुरू की थी। जब जिंदगी स्टार्ट होती है, इंसान एक बेबी होता है, उसकी और बूढ़े की बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। आप नोटिस करें, एक बेबी को आपको नहलाना धुलाना पड़ता है, कंघी करनी पड़ती, कपड़े पहनाने पड़ते, एक जो बूढ़ा हो जाता है बिल्कुल, उसके साथ भी यही करना पड़ता है, उसको नहलाना धुलाना पड़ता है, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता, उसकी अपनी कंघी उससे नहीं होती, उसे अपना जूता खुद नहीं पहना जाता। एक बेबी को देखें, उसके दांत नहीं होते, तो आपको प्यूरी बना के उसको खिलानी पड़ती है, बिल्कुल ब्लेंडेड फूड। एक बूढ़े के साथ भी ऐसा है, मैदा हजम नहीं करता भारी चीज को, बेबी की भी और एक बूढ़े की भी। एक बेबी भी है वो, उसकी टांगों में इतनी जान नहीं होती, लड़खड़ाता फिरता है, इसी तरह एक बूढ़ा भी है, लाठी पकड़े है तब भी लड़खड़ा रहा है। फिर आप देखें, एक बेबी भी है तो उसके भी पेशाब पखाना कपड़ों में ही निकल जाता है, एक बूढ़े का भी यही हाल है। एक वो भी है, वो ना समझ है, उसको कहते हैं ये ना समझ है, उसको समझ नहीं है, वो कभी कुछ करता फिरता है, कभी कोई चीज पकड़ता है, उसको समझ नहीं। एक बूढ़े की भी समझ भी खत्म हो जाती है, अकल भी जवाब देने लगती है, फिर घर वाले भी कहने लगते हैं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको क्या समझ है, वो फिर चुप कर जाता है। आप देखें, सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं, आप देखें कि जज्बाती तौर पे भी, एक बच्चा भी है ना, थोड़ी सी बात होती तो रोना शुरू हो जाता है, एक बूढ़े का भी यही हाल होता है। वो ही जब मर्द था तो उसकी आवाज कैसी, रोबदार थी, सारे घर में उससे लोग डरते थे। अब वही इंसान कैसा हो जाता कि बात बात पे रोने लगता, आवाज में वो घनघराहट ही नहीं रहती। ये है एक इंसान का अंजाम अगर वो जिंदा रहता है, अगर उसको उम्र दी जाती है। अगर नहीं उम्र मिली फिर तो वैसे ही कब्र में चला जाएगा, अगर उम्र मिल भी गई तब भी ये हाल है कि उसकी सब चीजें उसका साथ छोड़ने लगती हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए एक उम्र तक ही आप ऊपर को जा रहे होते हैं, जब टॉप पे पहुंच जाते हैं ना, इसी तरह एक हिल की तरह समझे, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो ऊपर को जाता है, ऊपर को जाता है, बड़ी खुशियां हो रही होती हैं हर उसकी बर्थडे पे कि भाई बढ़ रहा है भाई, बहुत ऊपर जाता है। लेकिन जब एक 25-30 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद डाउन द हिल, अब टॉप पे पहुंच चुका है, क्लाइमेक्स आ चुका है, आप दिन ब दिन वो नीचे को ही जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कभी ये बीमारी हो गई, कभी ऐसे हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, इसलिए क्योंकि दिन ब दिन कुव्वतें कम होती जाती हैं, अकल की कुव्वत, जिस्मानी कुव्वत, सोच विचार की कुव्वत, सब कमजोर होती जाती हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रही हैं, रुखसत हो रही हैं। और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर शुरू कर देता है उस तरफ जहां से उसने स्टार्ट लिया था। अब वो बढ़ेगा नहीं, अब उसकी ताकत ज्यादा नहीं होगी, चाहे कितने वाइटमिन खा लें, चाहे कितनी सर्जरीज करा दें, झुरियां खत्म कराने की कोशिश करें, कितनी क्रीम्स लगा लें, कितनी केयर कर लें, कहते बहुत केयर करते हैं, कितनी भी केयर कर लें, क्या बात है अपने बुढ़ापे को आने से रोक नहीं पाता इंसान। कितना भी छुपा ले अपनी उम्र को अपने सर्टिफिकेट में अपनी हर, लेकिन वो उसकी उम्र उसके चेहरे से झलकने लगती है, नकारा उम्र की तरफ, जिसको सूरह हज में नकारा उम्र कहा गया, उस तरफ लौटा दिया जाता है कि वो जानने के बाद भी कुछ नहीं जाने, ये कहा गया, वाकई जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता। तो आपको यकीन नहीं आता एक बूढ़े को देख के कि ये भी कभी जवान था। हाँ वो भी कभी जवान था, उसकी भी आपकी तरह उमंगे थी, उसके अंदर भी आपकी तरह एनर्जी थी, वो भी आपकी तरह रोब जमाता फिरता था, वो भी आपकी तरह किसी को आगे से बात नहीं करने देता था। लेकिन एक दिन वो आ जाता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, वो चीख सकता ही नहीं, उसकी आवाज भी दब जाती है, फिर एक तरफ उसको बिठा दिया जाता है। बच्चे के साथ ये कि इंसान की ये उम्मीद होती कि ये आगे को बढ़ेगा, बूढ़े के साथ ये है कि ये पीछे को ही जाएगा, इसलिए हर कोई उससे जान छुड़ाना चाहता है, बच्चे को हर कोई उठाना चाहता है। बच्चे की हर बात क्यूट लगती है लेकिन बूढ़े की बातें बाज दफा तकलीफ देने लगती है, उसके पास नहीं कोई बैठना चाहता। अल्लाह अकबर, क्या ये इतनी बड़ी निशानी नहीं तुम्हारे पास कि तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल अल्लाह का है। तुम अपनी जिंदगी को नहीं पकड़ सकते, वो तुम्हारे हाथ से जा रही है, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, रोक सकते तो रोक के दिखाओ, आप नहीं रोक सकते, आप कितनी भी कोशिश करें। कोई लोग हैं वो एक ही उम्र के ऊपर 10 साल तक वो यही कहते रहते हैं मैं 21 साल की हूं, लेकिन उससे उनकी उम्र रुक थोड़ी जाती है, वो जो चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं वो तो आती जाती हैं, उनको रोक के दिखाओ ना। इसीलिए इस उम्र से भी पनाह मांगी गई कि रजील बुढ़ापे से, कि या अल्लाह मुझे रजील बुढ़ापे से बचाना। और ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांगा करते थे, जो तशहुद में हम दुआएं मांगते ना उनमें ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बुख्ल व औज़ु बिका मिनल जुबन व औज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़िल उमर, अगर आपको पूरी नहीं भी दुआ आती तो कम से कम इतनी ही मांग लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उरद्दा, कि अल्लाह मुझे पलटाया जाऊं, मैं लौटाया जाऊं, इला अर्ज़िल उमरी, ये जो नकारा उम्र है, रजील उम्र है, उसकी तरफ लौटाया जाऊं, औज़ु बिका मिन फितनत दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। तो बहुत प्यारी दुआ है ये, तो चलो पूरी नहीं सही तो इतनी तो मांग ले। और हर एक इंसान ये देख रहा है, इसीलिए फरमाया ना ये जो इसके लिए कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे होने की और डिग्रियों की जरूरत नहीं है, एक आम अकल वाला इंसान भी इसको समझ सकता है। अफला याकिलून, फिर तुम्हें अकल नहीं आती, समझ नहीं आती, तुम देखते नहीं हो। तो हम अपने सामने देखते हैं इन चीज़ों को, और अपने बुजुर्गों को भी हम देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है पता नहीं हमने नहीं बूढ़ा होना, हमने इस उम्र को नहीं पहुंचना। तो अगर बूढ़े ना हुए तो मर जाएंगे, मरे ना तो फिर बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए बहुत लंबी लंबी उम्रों की किसी को बहुत ज़्यादा दुआएं ना दिया करें, ये कहें अल्लाह ताला बरकत वाली उम्र आपको दे। ये जो बहुत लंबी आपको उम्र दे, अल्लाह अकबर, बहुत लंबी उम्र तो रजील बुढ़ापे तक ही पहुंचा देती है, और कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ऐसे रजील बुढ़ापे से अपनी पनाह में रखे। जवानी इंसान को बहुत अच्छी लगती है और उसको दिल करता है कि जवान ही रहूँ हमेशा, लेकिन अल्लाह ताला दिखा देता है कि देखो तुम मेरे सामने बेबस हो, तुम मेरे सामने कोई भी ताकत नहीं रखते। अगर ताकत रखते हो ना तो अपनी जवानी को ढलने से बचा के दिखाओ, बुढ़ापे को आने से बचा के दिखाओ अपने आप को। अपने ओन जिस्म पे भी इंसान का काबू नहीं है। कयामत के दिन तो आप अगर हैरान होते हैं कि वो कैसे बोलेंगे, ये कैसे हो सकता है हमारा जिस्म हमारे खिलाफ हो जाए, तो आज भी तो आपका जिस्म कोई आपकी थोड़ी सुन रहा है। लेकिन सिर्फ इतना सा अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि इसको जिधर इस्तेमाल कर लो, अदरवाइज पूरे जिस्म के ऊपर अगर झुर्रियां पड़ रही हैं तो आपका दिल तो नहीं चाहता, लेकिन आपकी सुन रहा है कोई? नाखून बढ़ रहे हैं, आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन आपकी नहीं सुन रहे। आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाए, आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन वो नहीं सुनते। आपका कहते हैं कि मेरे दिल की कोई खराबी ना हो, शुगर ना हो, दिल का कोई आर्जा ना हो, बदहजमी ना हो, ये ना हो, वो कुछ नहीं सुनते। तो बहुत लिमिटेड सा, थोड़ी देर के लिए ये भी इख्तियार अल्लाह ने दिया, कयामत के दिन ये भी उठ जाएगा और ये भी खिलाफ बोलने लगेंगे। तो इंसान समझे, ये वो बातें हैं जिनके ऊपर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पढ़ के इनका हक नहीं अदा होता, आप गौर करें इन चीज़ों के ऊपर, सोचें फिर मैं क्या करने लगी हूँ, क्या क्या मैं इस जिस्म के लिए करती हूँ। इसने तो साथ छोड़ जाना है, या तो कब्र की मिट्टी बन जाएगा, ये उसमें रुल जाएगा, और या फिर इस बेबसी की हालत में चला जाएगा। ये तो जा रहा है, फिर मैं इससे वो काम ले लूँ जो मुझे आखरत में मेरे लिए फ़ायदा मंद हो। मैं क्यों नहीं इसको आज इस्तेमाल कर लेती, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि ज़मीन के ऊपर सजदा ही ना दिया जाए क्योंकि कमर दुखती है, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि रोज़ा ही ना रखा जाए क्योंकि अब ये वाली बीमारी है और वो बीमारी हो गई, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि इंसान कुरान ही ना पढ़ सके, इसलिए कि अब आंखें ही साथ नहीं देती, अकल ही जवाब दे चुकी है। तो ना अकल रहती है, ना समझ रहती है, ना ये जिस्म रहता है, तो उससे पहले क्यों नहीं इससे फायदा उठा लेते। हम सब अपनी जवानियां दुनिया को देते हैं और बुढ़ापा सोचते हैं कि वो अल्लाह को देंगे, जब रजील उम्र आ जाए तो फिर अल्लाह की तरफ जाएंगे, जबकि वो ऐसी नाकारा उम्र शुरू हो जाती है कि इंसान की कोई भी फैकल्टी उसके सही काम ही नहीं कर रही थी, कानों से सुनता ही नहीं वो, फिर इंसान की सोच समझ की भी वो सलाहियत ही नहीं रह जाती। बात बात के ऊपर इंसान चिढ़ता है, गुस्सा आ जाता है, जुबान लड़खड़ा आ जाती है, ऐसे वक्त को रखा हुआ है अल्लाह के लिए। और जो वक्त जिसमें सारी सलाहियतें अपनी टॉप पे हैं उसको दुनिया के लिए रखा हुआ है, उसमें जॉबें कर लूँ, उसमें ये कर लूँ। और जब आप दुनिया आपको उठा के फेंक देती है कि आप रिटायर हो रहे हैं, जाओ जाके वहां बैठो, घर बैठो, अब हमारी हमें आपकी जरूरत नहीं, तब आप कहते हैं अब अल्लाह अल्लाह करेंगे, अब हज पे जाऊंगी। सोच सोच लेना, और अल्लाह ताला से चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला वो दे दो जो जन्नत है, जो सबसे आला चीज है, और हम अपनी आला सलाहियत और अपनी सबसे आला उम्र अल्लाह को नहीं देना चाहते। जो हमारी एनर्जी सबसे आला है वो अल्लाह के लिए नहीं लगाना चाहते। अल्लाहु अकबर। तो आज इन ताकतों को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाएं, जो साथ छोड़ जाएंगी, जो नाकारा हो जाएंगी, और आज अपने आप को इतनी बड़ी चीज ना समझे कि मैं बहुत कोई बड़ी चीज हूं, जबकि ये सब चीजों ने साथ छोड़ जाना है। एक बूढ़े को अपने सामने देखें, कभी ओल्ड होम्स में जाया करें, जरूर विजिट किया करें, जाके देखा करें, फिर सोचा करें एक दिन मैं अगर जिंदा रही तो इस उम्र को पहुंचूंगी। जो लास्ट हमारा कोर्स था मैंने उसके अंदर भी ये एक असाइनमेंट दी थी कि आप लोग ओल्ड होम का जरूर विजिट करें। वो इस तरह सिर्फ इंसान को नहीं समझ आती, वहां पे जाके देखें कैसे इंसानों के हाल हो जाते हैं। वही इंसान है ना, कभी आप सोच भी नहीं सकते कि कितने हैंडसम, कितने खूबसूरत, इतने हसीन चेहरे होंगे, ये कैसे पावरफुल होंगे, किस ओहदों पे बैठे होंगे, कितने इनके एक दफा ऑर्डर देने पे कितने लोग हाजिर बाश हो जाते होंगे, क्या इनका मतलब रोब और दबदबा होता होगा दुनिया पे, कि किस तरह से ये हो गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान है, हार गया जिंदगी से ना, चिटान हुआ करते थे कभी और वो जैसे चिटान टूट गई। अभी मौत नहीं आई, उससे पहले ही अल्लाह ताला इस दुनिया में ही दिखा देता है तुम बेबस हो। मत जोम करो इन ताकतों का, इन कुव्वतों का, इन ओहदों का, इस पैसे का, किसी चीज का भी जोम नहीं होना चाहिए इंसान को, किसी चीज के भी तकबर में मुबतला ना हो, बढ़ बढ़ के बातें ना करें। आज आप टेबल के उस तरफ बैठे ना कल इस तरफ होंगे, जिनको आज आप देख रहे हैं ना कि हाय हाय, वो उसी जगह पे आप बैठे होंगे कल। तो इसलिए कभी इंसान इस धोखे में मुबतला ना हो कि ये जवानियां चलती रहेंगी और ये इसी तरह सब चलता रहेगा और कुछ नहीं होता, मुझे नहीं कुछ होता, लोग तो पहुंच गए ओल्ड होम में इस रजील उम्र में जाकर, मैं तो बिल्कुल ठीक रहूंगी, नहीं। और लगा लें इस जिंदगी को इससे पहले कि ये मट्टी बन जाए, ये जिसम मट्टी बन जाए, इससे पहले इसको लगा लें अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें बेहतरीन वो है जिसको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और वो नेक अमल करे उसमें। तो अगर किसी को लंबी उम्र मिल जाती है और उसमें नेकियां कर सकता है तो इंसान बेहतरीन है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़ता है वो अर्जल उम्र की तरफ नहीं लौटाया जाता, उसके ऊपर ऐसी रजील उम्र नहीं आती। तो इसका मतलब है कि कुरान पढ़ने से, पता है इब्ने अब्बास मुफसिर कुरान और सहाबी रसूल है, उनका ये फरमान है कि जो कुरान पढ़ता है वो अर्जल उम्र की तरफ नहीं लौटाया जाता। तो आप इसे बचना चाहते हैं ऐसी रजील उम्र से, तो कुरान पाक का साथ ना छोड़ें, इसको अपनी जिंदगी में शामिल रखें, इसके तालिबे इल्म बन जाएं, इसके साथ वक्त गुजारें और इसको अपना वक्त दें। वमा अल्लमना हुशियारा वमा यंबगीला, और नहीं सिखाया हमने उसको शेर, ये क्योंकि ये कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि इनको तो ये शेर व शायरी करते हैं, ये तो ये कलाम जो कुरान है ये तो शायरी है बस, ये शेर नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इनको शेर सिखाया ही नहीं, ये तो एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर। असल में ये इतना मेसमराइजिंग कलाम था ना जो दिल पर असर करता था। तो आप क्या कहते, कभी जादू कहते, कभी कहानत कहते, कभी शेर व शायरी कहते, जबकि शेर तो ख्याली बातें होती हैं, झूठी बातें होती हैं, इधर उधर के कलाबे मिलाए होते हैं, सच बात तो नहीं होती। अगर सच्ची बात भी हो तो अब भी शेर एक नॉन सीरियस चीज है और कुरान एक बहुत सीरियस बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक नहीं था कि आप शेर कहते, आपकी नबुव्वत के, यानी आपकी नबूवत का मुकाम इतना ऊंचा है, शेर व शायरी तो बहुत लो लेवल की चीज़ है, वो तो शायर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शायर थोड़ी थे, बल्कि आपने तो अपनी पूरी जिंदगी में भी कोई शेर ऐसे बयान नहीं किए कि कोई शायरी की हो, कोई बहुत, कभी कोई काफिया मिल गया, एक बात बोली और उसके साथ कोई काफिया मिल गया तो अलग बात थी, वो भी शाज़ो नादिर, लेकिन अदरवाइज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शेर नहीं कहे थे, जबकि वो तो शेर व शायरी का ही जमाना था। लिहाजा उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शेर آپ کو کہنا ہی نہیں آتا تھا تو قرآن کیسے شیئر ہو سکتا ہے جو آپ کی زبان سے ادا ہوا؟ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، اور نہ ہی اس کو زیب دیتا ہے، اس کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، بلکہ یہ قرآن شیر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے، جس سے نصیحت پکڑی جائے وہ اس کو بھی ذکر کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعلیٰ ترین فارم ہے ذکر کی، اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، جاننا چاہتے ہیں میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیا ریلیشن شپ ہے، کتنی قربت ہے، تو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ دیکھ لیں۔ جتنا آپ کا وقت قرآن کے ساتھ گزرا، اتنا ہی آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہے اور مضبوط ہے۔ جتنا قرآن سے آپ دور ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہے، کیونکہ یہ اس رب کا کلام ہے، یہ واحد کلام ہے اس دنیا میں جو اس رب کا ہے۔ باقی سب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ چینج ہو گئے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس میں بنا لیا، ایز اٹ از تو الفاظ ہیں بھی نہیں، چینج نہیں بھی ہوئے تو کوئی بھی بعد میں لکھے گئے، وہ تو الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، یہ الفاظ رب کے ہیں۔ الفاظ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ادا کیے، جبرائیل علیہ السلام کو دیے، انہوں نے آ کے یہ الفاظ ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی کی باتوں کو پسند نہیں کرتے یا ان کی باتوں سے دور بھاگتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے؟ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ کو دل کرتا ہے یہ بولتا رہے اور میں سنتی رہوں، ایسے ہوتا ہے نا؟ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا، اس کا دل قرآن سے بھرتا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں، یہ صرف کہنا مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، یہ تو بہت ایک مطلب ایسی وربل ایک یعنی زبانی بات ہے، اصل تو آپ کی عمل بتائے گا آپ کو کہ کیا آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور کیا واقعی آپ کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط اور قریبی ہے۔ قرآن کی فارم میں آپ جان سکتے ہیں اپنی اس بات کا جواب۔ اور یہ ذکر ہے، یہ ذکر یہ لوگوں کو اس کی یاد دلاتا ہے، اور یہ ذکر ہے یعنی یہ نصیحت ہے، پکڑنے کے لیے چیز ہے، یہ نصیحت کی چیز ہے، اور اس میں شرف ہے، یعنی یہ لوگوں کے لیے شرف کا باعث بنتا ہے، بلندی کا باعث بنتا ہے۔ جس نے اس کو تھاما اس دنیا میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان دی، بڑا مقام دیا۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کو، ان کے بعد پھر جن لوگوں نے بھی اس قرآن کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا اور ان کو بلندیاں دی، ان کو منزلت دی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس رب کا کلام ہے، اور پھر یہ قرآن مبین ہے، یعنی بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اس کے اندر ہر چیز کھول کے بیان کر دی گئی، کوئی ایمبیگوس چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں آپ کہیں جی میں تو کنفیوز ہی ہو گئی۔ جو اسے ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کھلی کھلی باتیں ہیں۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ، اس کا مقصد بتایا گیا، تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو انذار کر دیا جائے، وارن کر دیا جائے، جو لوگ زندہ ہیں، جس کا دل زندہ ہے نا وہی زندہ ہے، باقی تو مردے ہیں، یہ چلتے پھرتے مردے ہیں یہ باقی سب، کیونکہ ان کے اگر دل زندہ نہیں ہے نا، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ مردہ دل ہے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کیونکہ ان کے دل مر چکے ہیں۔ تو دل کی زندگی انسان کی زندگی ہے، تو جو زندہ ہے اس کو انذار ہو سکے، وہ پھر واقعی اس انذار سے فائدہ بھی اٹھائے گا، ظاہر ہے۔ انذار کیا چیز ہوتی، میں نے آپ کو بتایا تھا، وارننگ۔ وارننگ کس چیز کی؟ وارننگ آگے یہ کچھ ہے، جیسے آج ہم نے پڑھا کہ آگے جنت کے یہ حالات ہیں، حشر کے یہ حالات ہیں، جہنم کے یہ حالات ہیں، سامنے ہی کر دی جائے گی، سامنے ہی لائی جائے گی، یہ کہا جائے گا انسان کو، یہ سب انذار ہے۔
इंतजार के लिए। देखो लोगों, अगर अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो ये अंजाम। इसलिए आया ये, इसलिए नहीं आया कि आप बस पढ़ के और उसके बाद तर्जुमे याद करके रखते। इससे आया कि इससे वाकई हम सबक लें, अपनी गफलतों को दूर करें, अल्लाह से दूर हो गए तो करीब आ जाएं, जिंदगी को फिक्स कर लें। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, चांस है, अभी मिला हुआ, सांसें चल रही हैं। तो इससे इंतजार लेके हम अपने आप को सीधे रास्ते पर लेकर आए। जैसे कि कोई अगर कह दे जी आप इस रास्ते पे ना जाएं, आगे डाकू लूट मार कर रहे हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करें। ये क्या है? इंतजार है, ठीक है। उसने आपको डराया कि वहां पे डाकू हैं और वो लूट मार कर रहे हैं, आप इस रास्ते से बचें। आप अपना क्या करते हैं? रास्ता फिर बदल लेते हैं। आप ये नहीं करते उसी रास्ते पे चल पड़े, इंतजार हो गया मैं उसी पे जाऊंगी, ये नहीं करते आप कभी। आप रास्ता बदल लेते हैं, बल्कि उसके शुक्र गुजार होते हैं, एहसान मंद होते हैं जिसने आपको इस मुसीबत से बचा लिया। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया, वो नज़ीर भी थे। जिस रास्ते पे चलने से उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे खतरा है, ये जहन्नुम की तरफ जाता है, और ये देखो ये रास्ता है जन्नत की तरफ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हर चीज़ तुम्हें बता दी है जिसमें तुम्हारे लिए खैर है, और हर चीज़ उससे तुम्हें बता दी है जिसमें तुम्हारे लिए इशारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी खैर की बातें बता दी हमें, जो जन्नत की तरफ ले जाने वाली थी वो सब बातें बता दी, जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली थी उन सब बातों से खबरदार कर दी। अब भी अगर हम उसी पे चलना चाहें तो वे तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो ये इसलिए आया था कि हमें बता दे। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के ये जो कलाम है ना, अल्लाह ताला ने इसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, और इसकी जो तफसीर है उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी ली, यानी जो इसका फहम है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हर आयत को जिस तरह से समझाया है वो भी महफूज है, उसकी भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। लिहाजा हम उस कुरान को उस हदीस की रोशनी में पढ़ के उसको समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, और ताकि डर जाएं वो लोग, खबरदार हो जाएं वो लोग, अपनी ज़िंदगी को फिक्स कर लें वो लोग जो जिंदा हैं, और जो मुर्दा है उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। वह हक़ुल क़ौलु अल काफ़िरीन, और काफरों पे हक हो जाए बात, हक हो जाए बात, यानी साबित हो जाए उनके पर बात कि उनके बारे में आया कि उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, वो उस अजाब को जाके भुगतें। काफरों के खिलाफ बात बात साबित हो जाएगी ना, हुज्जत तमाम हो जाएगी कि उनको डराया गया था, उन्होंने नहीं माना, और वो उसके बाद जहन्नुम का ईंधन बने। और वैसे भी देखें ये बात समझ आ जाती है कि लियोन तेरा मन काना हयन, अगर इसको मानवी तौर पे हयन ना लिया जाए और हिस्सी हयन लिया जाए यानी फिजिकली जिंदा, तो वाकई ये जिंदों के लिए इंतजार करने के लिए आप मुर्दों के लिए पढ़ते हैं। आप कहते हैं मुर्दों को इसकी जरूरत है, और भाई कुरान खुद कह रहा है कि ये जिंदों के लिए है। मुर्दे ने बेचारे ने जाके अब क्या इंतजार को उसको कर भी दिया तो अब उसने क्या करना। बल्कि इवन मुर्दा तो छोड़ें, जो बूढ़े हो जाते हैं ना कभी कभी, उनको जिस वक्त अल्लाह ताला तौफीक दे देता है, अब समझ आ रही है, अब क्लास में आते हैं, अब सीख रहे हैं, तो कितने ही लोगों से मैं मिली हूँ जो फिर रोते हैं और कहते हैं कि ये हमें आज समझ आ रही है, अब तो जिंदगियां हमारी गुजर गई, काश हमारी जवानी में हमें समझ आ जाती, काश उस वक्त हमें कोई बता देता ये। तो उनके आंसुओं का आप अंदाजा नहीं कर सकते, और उनके रिग्रेट्स का और उनकी हसरतों का। ये उस टाइम पे भी जाके इंसान रिग्रेट करता है, तो जो दुनिया से चला गया अब वो क्या करेगा, उसको आप पढ़ पढ़ के भेज रहे हैं। खुद हिदायत का सामान हम नहीं इसे लेते, उनके पढ़ के भेजने का हमें शौक है बस, वो क्या दुरुस्त करेंगे अपनी जिंदगी, वो क्या इंतजार। ये बताया गया इसका मकसद ये ले, लियोन थी रामन का नहाइया, देख लें आप खुद। इसलिए आया ये कि जिंदों को इंतजार हो, वो खबरदार हो, उनको वार्निंग मिल जाए। इसमें किधर लिखा हुआ है कि ताकि मुर्दे भी जो है ना वो उनको आगे आसानियां हो जाए। खुद तो पहले इससे फायदा उठा लें, खुद तो अपनी जिंदगी को स्ट्रेट कर लें। तो समझ आ गई कि हिस्सी और मानवी दोनों तौर पे यहां पे जिंदा लोगों के लिए है, ये जिसका दिल जिंदा है और जो फिजिकली जिंदा है। اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما.
کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے مویشیوں کو, یعنی ہم نے مویشیوں کو بنایا, اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں.
اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے آخرت کے دلائل اور توحید کے دلائل یہاں سے آگے تک دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب کچھ ہم نے بنایا, جن چیزوں سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو چاہے وہ مویشی جانور ہیں تمہارے سامنے, ان سے تم ان کے فہم لہا مالکون, تم ان کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہو آپ کہ میری گائے میری بکری میری بھینس میری اونٹ ان سے فائدہ اٹھاتے ہو, اس کا گوشت کھاتے ہو, اس سے دودھ پیتے ہو, ان پہ سواریاں کرتے ہو, ان کے طرح طرح کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہو, یہ ہم نے تمہارے لیے بنائے, ہمارے ہاتھوں نے بنائے, جو اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ ہم نے نہیں بنا کے دنیا میں بکھیرے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مطیع بھی بنا دیا. آگے یہی بات آ رہی ہے, وضللناہا اور مطیع کر دیا ہم نے ان کو, لہم لیے ان کے, فمنہا رکوبہم ومنہا یاکلون, تو ان میں سے کچھ کی سواری کرتے ہیں کچھ سے کو کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی کام کی چیز بنا دیا, سواری بھی انسان کے لیے, جو یہ جو اب تو گاڑیاں آ گئیں لیکن پہلے تو انہی چوپائے جانوروں کے اوپر ہی لوگ سواری کرتے تھے, گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر انسان کو پیدل ہر جگہ جانا پڑے, مثال کے طور پہ آپ کسی دن سوچیے گا جب اپنی گاڑی میں جا رہے ہوں, جب آپ کہتے ہیں 20 منٹس کی ڈرائیو ہے 30 منٹس کی ڈرائیو ہے, اس وقت ذرا سوچیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سواری نہ دے تو ہم تو صبح سے چلیں اور ایک جگہ پہنچنے تک ہی ہم ارے شام ہو جائے, کیا ہم وہاں پہ انجوائے کریں گے اور پھر واپس آنے تک رات ہو جائے, تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جائے. ہم اٹھاتے ہیں چابی گاڑی میں بیٹھے چل پڑے, یا کسی ٹرین میں بیٹھے یا کسی بس میں بیٹھے, جو بھی ہماری سواریاں, اور منٹوں میں دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ کتنا مشکل ہو جاتا اگر ایسا نہ ہوتا, آپ کے پاس سڑکیں بھی ہوں, آپ کے پاس اور بھی ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کے پاس سواری نہ ہو. کسی دن یہ سوچ کے دیکھیے گا کہ کیسا لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں, اگر آپ جانوروں پہ تو سواری نہیں کرتے تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں, کم از کم اپنی گاڑیوں سے ہی سوچ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بھی مطیع بنایا, آج تک بھی ہم ان جانوروں کے اوپر بہت طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو مطیع نہ بناتا نا, شیر چیتے کی طرح یہ ہوتے کہ تو پھر آپ ان سے دیکھ لیتے کہ آپ ان کو کتنا ذبح کر سکتے ہیں, یا ان کو دیکھ لیتے کہ کتنا دودھ لے سکتے ہیں ان سے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا, چھوٹا بچہ بھی ایک اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل پڑتا ہے, ان کے اوپر بوجھ لادتے ہیں وہ بےچارے, مشقت اٹھاتے ہوئے بوجھ اٹھاتے ہوئے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, سواریاں ان کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہیں. اللہ فیہا منافع و مشارب, ان کے لیے اور بھی ان مویشیوں کے اندر فائدے کی چیزیں ہیں بہت سارے. میں نے آپ کو فائدے بتائے, ان کی کھال بھی, لیدر بھی دیکھیں, یا اون بھی, کتنی فائدے کی ہے, ان کی ہڈیوں تک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ان میں پینے کی چیزیں بھی ہیں جیسے دودھ ہے. افلا یشکرون, کیا پھر وہ شکر نہیں ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی یہ مویشی جانور میں کتنے طرح کے فائدے رکھ دیے, اور آپ کے لیے اس کو مطیع بھی کر دیا, ورنہ ہم پال ہی نہ سکتے ان کو, گھروں میں رکھ ہی نہ سکتے, فارمز میں رکھ ہی نہ سکتے. اگر وہ ایک جانور سے فائدہ اٹھانے لگتے تو چار بندوں کو وہ کھا جاتا شیر کی طرح. کتنے لوگ تو اسی چیز کے اوپر لگ جاتے کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں, اللہ تعالیٰ نے کنٹرول میں دے دیا. کبھی اندازہ کریے گا ہمارے فریج میں جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ان میں سے کتنی ہیں جو ان مویشی جانوروں کی سے آتی ہیں, یا جتنی چیزیں ہم پہنتے ہیں ان میں سے کتنی چیزیں. آپ دودھ اٹھا لیں, مکھن اٹھا لیں, دہی اٹھا لیں, اور گھی اٹھا لیں, گوشت اٹھا لیں, کتنی طرح کی چیزیں. پھر یہ ہل بھی جوتتے ہیں, اب تو خیر ٹریکٹر آ گئے, لیکن پہلے تو ہل بھی انہی کے ذریعے جوتا جاتا تھا, تو تب کسان کے لیے آسانی ہوتی تھی. تو افلا یشکرون, ایک ہی چیز تمہیں کہی گئی کہ شکر تو ادا کرو, تو
तो फिर जब दूध पिए शुक्र अदा करें, गोश्त खाएं शुक्र अदा करें, वैसे भी शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जो इन मवेशी जानवरों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुती कर दिया और तुम इनसे फ़ायदा उठाते हो, इस पर शुक्र भी अदा किया करो। शुक्र करना ज़रूरी है, और शुक्र गुजारी में सिर्फ ज़ुबान से शुक्र नहीं, उसके बाद फिर ज़रूरी है कि इंसान इन चीज़ों को भी अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें, और जो खाया पिया हमने उसके बाद उस एनर्जी से भी अल्लाह की इताअत के काम करें। और ये भी शुक्र है कि फिर इन जानवरों की भी बेकदरी ना करें, इन पर जुल्म ना करें, इनके ऊपर बेजा बोझ ना डालें, इनसे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के काम ना करें, ठीक है। तो ये सारा कुछ शुक्र गुजारी में आता है। वत्तखदू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, वो बना लेते हैं अल्लाह के सिवा कुछ और इला ताकि वो मदद दिए जाएं उनके ज़रिए, ये इला इनके काम आए। देखिए देता अल्लाह है, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तख्लीक किया इनको तुम्हारे लिए, हमने बनाया इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुती, हमने इनको तुम्हारी सवारी के लिए बनाया, आप इसको इसमें से खाते भी हैं, इसका मतलब इनमें से खाना जो है ना वो कोई हराम नहीं है कि हम कोई जुल्म कर रहे हैं इन जानवरों पे, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको इसलिए बनाया कि आप इसमें से खाएं भी पिएं भी, कोई इसके अंदर आपके ऊपर ममानियत नहीं है। ये शुक्र गुजारी नहीं कि हमने तो खाना ही नहीं, हम तो आपसे परहेज कर रहे हैं, हम इतने नेक हो गए, नहीं अब खाओ पियो लेकिन शुक्र अदा करो ना, उसके बाद अल्लाह की इताअत के काम करो कि जिसने इतना कुछ दिया मैं उसकी नाफरमानी कैसे कर सकती हूँ, उसके बन के रहो, ठीक है, ये है शुक्र गुजारी, उसके सामने झुके रहो, ये है शुक्र गुजारी। तो खाना भी इससे मिला आपको, पीना भी इससे मिला, पूरा डाइट का सामान इनके जरिए आ गया, और खैर दूध तो पूरा कंप्लीट एक मील है, फिर भी इंसानों का हाल ये है कि अल्लाह ताला इतनी नेमतें देता है और वो औरों को माबूद बना लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान कहता है हाँ मैं अल्लाह को ही मानता हूँ, उसको ही इलाह मानता हूँ, लेकिन जब मुझे कुछ और चाहिए इससे ज्यादा बढ़ के चाहिए तो फिर और याद आ जाते हैं, फिर उनके आस्थाने याद आते हैं, उनके मज़ार याद आते हैं, उनकी चीज़ें याद आती हैं। तो जो और भी देगा वो भी अल्लाह ही देगा, जो मुश्किल कुशा है वो भी अल्लाह ही है, जो हाजत रवा है वो भी अल्लाह ही है, जो फरियाद रस है वो भी फरियाद हमारी फरियादें पूरी करने वाला है, जो हमारा गौस है वो भी अल्लाह ही है। ला यस्तुतीउना नसरहुम वहुम लहुम जुंदुन मुहतरून, वो इस्तात नहीं रखते इनकी मदद की, बल्कि वो इनके लिए लश्कर हैं हाजिर किए गए, वो इनकी मदद की ताकत नहीं रखते ना दुनिया में ना आखरत में, ये बुत या जिनको भी अल्लाह के सिवा पूजा जाए, मिन दूनिल्लाह आ गया ना, जिनको भी माबूद बनाया गया उनकी कोई से नहीं है ना इस दुनिया में और ना आखरत में, तो फिर कैसे उनको मदद के लिए पुकारते हो, फिर क्यों उनकी पूजा करते हो। देखिए ना इंसान खुद इनकी बल्कि मदद करता है, वहुम लहुम जुंद मुहदरुन, हुम का मतलब क्या है, जो ये पुजारी है, जो ये आबिद है, वो खुद इनकी पूजा इनकी खिदमत के लिए हाजिर होके खड़ा हुआ है, कैसे कैसे इनकी मदद करते हैं, इसलिए कि इनके ऊपर आस्थाने बनाते हैं, मज़ार बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे उनके ऊपर, फिर चादरें चढ़ाएंगे, फिर चढ़ावे चढ़ाएंगे, फिर इनकी हिमायत के अंदर लोगों को इधर को बुलाने के लिए कन्विंस करेंगे, किसी से बहस करेंगे, लंगर का इंतजाम करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर उन खुशबुएं लगाते हैं, फिर उन दूध को उससे धोते हैं, फिर क्या क्या कुछ करते हैं, हत्ता कि इनको साफ सुथरा भी करते हैं, कोई डस्ट भी तो पड़ जाती है ना, तो ये इनके लिए खुद हाजिर बाश हुए हैं एक फौज बन के, वो तो खुद अपने नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, उनकी बात की गई है जो दुनिया से जा चुके हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं, तो ये कितने बेबस हैं। फला यहजुन का कौलुहुम, तो ए नबी आपको गमगीन ना करें इनकी बात, इन्ना नालमु मा युसिरूना व मा युअलिनून, हमें अच्छी तरह पता है जो ये छुपाते हैं और जो ऐलान करते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपके दुश्मन जिहालत की जो बातें कर रहे हैं, आपको झुटलाते हैं, आपका मजाक करते हैं, आपकी मुखालफत करते हैं, ये बातें आपको गमगीन ना करें। देखें जब भी कोई दाई दीन होता है वो दो लोगों खैर की बात बता रहा होता है, लोग आगे से मजाक उड़ाना शुरू कर दें, कोई ताने दे रहा है, कोई मुखालफत कर रहा है, कोई कुछ किसी तरह से उसको अजियत देने की कोशिश कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो उस वक्त दिल तो गमगीन होता है, दिल में तो बात आती है, लेकिन यहाँ पे कहा गया आप गम ना करें। हुज़्न कैसा होता है, फला यहज़ुन का ऐसा गम ना जो इंसान को चिमट जाता है ना, जिसमें इंसान घुलने लगता है, तो ऐसा गम ना करें। एक वक्ती तौर पे इंसान को थोड़ा होता है, हर एक इंसान है ना इसलिए होता है, लेकिन इसको दिल का रोग ना बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे घुलना शुरू हो गए थे कि ये क्यों नहीं बाज आते, ये क्यों नहीं समझते, क्यों इस चीज से हुज़्न से क्यों मना किया गया। इसलिए कि जब इंसान को कोई ऐसा गम लग जाता है ना जो उसको अंदर ही अंदर घुलाना शुरू हो जाए, तो फिर वो इंसान उसकी ताकत जवाब देने लगती है, वो कमजोर पड़ने लगता है, उससे तो नेकी के काम भी करने मुश्किल हो जाते हैं फिर, क्योंकि इंसान की जाहिर है एक सलाहियत होती है, जब गम लगता है तो गम इंसान की एनर्जी को डाउन कर देता है। इसीलिए शैतान ना बहुत चाहता है कि लोगों को गमजदा रखे, गमजदा रखे ऐसे गम में बस कर दे कि वो बस गम में ही घुलते रहे। इसीलिए आज देखें किसी को किसी चीज का गम लगा हुआ है, किसी को किसी चीज का गम लगा, हाँ आखिरत का गम नहीं किसी को लुकता, दुनिया के गम ही लेके बैठे हुए हम, वही हमें घुलाते रहते हैं और वही हमारी सोच है और उन्हीं से हमें रात को नींदें नहीं आती। तो यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह ताला आपको काफी है ना, अल्लाह ताला को पता है कि वो ये लोग जो दिल में इन्होंने छुपाया हुआ है आपके खिलाफ साजिशें और बातें और कितने हसद और कीने इनको हैं आपसे, और जो ये जाहिर करते भी हैं, जो जुबान से बोल बोल के कहते हैं, जो अजियतें पहुंचाते हैं, वो भी सब अल्लाह ताला को पता है। तो आप गम ना करें। इसलिए दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मसनून दुआओं में आप देख सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न वल अज़्ज़ी वल कसल वल बुख़्ली वल जुबन। तो ये दुआ भी तो हम और हुज़्न ये दोनों चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह में आने की ज़रूरत है इंसान को, वरना ये इंसान को ले ही बैठती हैं, ये इंसान को ले बैठती हैं, तो कई बीमारियां बंदे को लग जाती हैं, पर स्ट्रेस की वजह से इंसान को कुछ और सोच सोचने का वक्त ही नहीं देती, वही सोच जहन पे गालिब रहती है, अगर वो दुनिया की कोई सोचे हैं और दुनिया के गम हैं। तो जिसने आखरत का गम पाल लिया ना, उसके लिए दुनिया के गम हल्के हो जाते हैं, इसलिए आखरत का गम लगा लें, उसके लिए गुलें, तो फिर तो समझ आती है, फिर उसके लिए इंसान उठेगा भी, कुछ करेगा भी। और लेकिन जिसने दुनिया के गम पाले हुए, वो तो फिर क्या सोचेगा आखरत की, और उसको क्या फिक्र रहेगी आखरत की, उसके पास तो टाइम ही नहीं आखरत का सोचने का, उसको यहीं के गम खाए जाते हैं। उस वक्त सोच लिया करें कि ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, इसका गम भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। अब अलमियारा, क्या भला नहीं देखता अल इंसान, इसमें कुल इंसानों को बात, देखने से मतलब यहाँ पे है कि अकल से देखना, अकल की रोयत, कि अकल से इंसान समझे बात को, ये नहीं कि जाके देखना शुरू कर दे। ये क्या इंसान ये देखता नहीं, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, कि हमने इसको पैदा किया एक नुतफे से, एक हकीर पानी की बूंद से इसको पैदा किया। असल में इंसान को बार बार अल्लाह ताला कुरान करीम में उसकी असलियत, उसकी जो कि कहाँ से वो पैदा हुआ है, कहाँ से आया है, उसकी हकीकत को बयान फरमाया। क्यों? इसलिए कि इंसान जब अल्लाह ताला को पहचानता है और अपने आप को पहचानता है ना, तो फिर वो झुक जाता है, फिर उसके पास सर उठाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर पता चलता है ना कि मैं क्या हूं और वो रब क्या है। तो जो इंसान बातें बनाते हैं ना बहुत ज्यादा, जैसे आगे आया फाइदा हुआ खसीम मुबीन, फिर ये क्या बन जाता है, नुतफे से पैदा हुआ और फिर क्या बन जाता है, कुल्लम कुल्ला झगड़ालू। वो झगड़ालू पता है क्यों बनता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है ना अपनी असलियत, पता है वो भी इसकी जहन से ओझल है, कभी सोचता ही नहीं ना। अगर आपको नॉलेज है, अभी तो मैंने बताया ना यारा का मतलब होता है कि इंसान यानी गौर व फिक्र करे, सोचे इस चीज के ऊपर, जैसे अलम तरा कैफा, जब ये आता है तो ये नहीं मतलब होता कि हम जाके देखना शुरू हो जाए, क्या तुमने देखा नहीं, मतलब ये होता है इसके ऊपर गौर करो, तो क्या सोचता नहीं है इंसान, गौर नहीं करता इस पे कि वो किस चीज से पैदा हुआ, वो फिर देखो वो किस तरह झगड़े करने लगता है, ऐसे को जेब देता है झगड़ा करना जो इस गंदे पानी की बूंद से पैदा हुआ। एक इंसान के एक वक्त में जो स्पर्म उसका रिलीज होता है उसमें 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं और उनमें से सिर्फ एक जाके ओवन तक पहुंचता है, सोचे एक, तो एक पानी की इतनी सी बूंद से इंसान को तख्लीक किया उस रब ने। गौर तो करे इंसान कि वो क्या चीज है, इतनी हकीर सी चीज, इतनी कमजोर सी चीज जो कुछ भी नहीं है, उससे उसको देखने सुनने वाला सोचने वाला समझने वाला बना दिया और उसको खड़ा कर दिया उसके पैरों पर, उसको अकल दे दी, समझ दे दी, बोलने की ताकत दे दी, सुनने की ताकत दे दी, देखने की ताकत दे दी। और जब ये ताकतें और कुव्वतें अपने कमाल को पहुंच गई, यानी पूरा फुल ग्रोन मैन बन गया वो, जब उसको समझ आ गई चीजों की, तो उसके बाद क्या करता है, खसीम मुबीन बन जाता है, बहसें करने लगता है, झगड़े करने लगता है अल्लाह की जात के बारे में, उसके दीन के बारे में, उसके पैगंबर के बारे में, कभी कुछ शोशे लाता है, कभी कुछ बहस करता है, कभी कोई झगड़ा करता है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, इतनी बहसें। ये तो झगड़ा खसीम है ना, खसामा झगड़े वो कहते हैं, वैसे तो झगड़ा या बहस करना वैसे भी अच्छा नहीं। आपको अच्छा लगता है आपका बच्चा आपसे बहसें करे और झगड़े करना शुरू कर दे, आप ये कैसे कहते हैं, पहले मुझे ये बताएं, पहले वो करें, तो आप क्या कहते हैं, अच्छा लगता है आपको? आप तो कहते हैं बस मुझसे बहस ना किया करो, बात सुन लिया करो। लेकिन अल्लाह ताला के दीन के मामले में हमने बात सुननी नहीं होती, आगे से बहसें और झगड़े शुरू कर देते। बल्कि कुछ लोग कुरान पाक के बारे में बहसें करना शुरू कर देते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान के जरिए बहसें ना करो, ना अल्लाह की किताब से बाज को बाज के जरिए झूठलाओ कि ये देखें जी कुरान में ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, देखें जी यहाँ पे तो ये है, ये तो ये क्या बात हुई, ये क्या ऐसा हुआ, इतनी नापसंदीदा बात। वैसे ही झगड़ना बुरी बात है, और कहां दीन के मामलात में जिनमें हमारी तो कोई अकल है भी नहीं, और हम ये सोचते हैं कि हम अकले कुल हैं, हमें बहुत आता है, अब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, मीन मेखे निकालना शुरू कर दे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये तो पहले की बात है, ये तो आज नहीं चल सकती, ये तो इस तरह नहीं है, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आती, लॉजिक क्या है इसमें, इतनी तनकीद। बात बात के ऊपर कोई ना कोई निकाल के शोशा ले आना जिससे बहसें करें। आप देख लें मजलिसों के अंदर लोग बैठे होते हैं, कितनी दीन पे बहसें शुरू कर देते हैं, ना आगे पता ना पीछे, ना कभी कुरान पढ़ा ना हदीस का कोई इल्म, इतनी बातें हदीस के ऊपर कभी बातें करते हैं, कभी कुरान पे बातें करते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से कोई चीज ले आते हैं उस पे, कभी हज़रत आयशा के साथ निकाह के ऊपर बातें शुरू कर देते हैं, कभी पर्दे के ऊपर बहसें शुरू कर देते हैं, पता नहीं इतने झगड़े इतनी बातें क्यों, समय ना आता, ना नहीं कहना आता, तुम देखो तो सही तुम कहां से पैदा हुए थे और तुम किसके बारे में बहसें कर रहे हो, अल्लाह के दीन जो अल्लाह ताला ने उतारा अपने इल्म से अपनी हिकमत से, वो और तुम्हारी क्या इल्म और हिकमत है जो तुम मुकाबले करना शुरू हो गए, ये मुकाबले ही हैं जब इंसान बहस करता है कि मुझे बड़ा पता है, तो तुम अल्लाह के मुकाबले में आओगे। एक होता है इंसान को किसी चीज का नहीं पता होता, वो कहता है मुझे बता दे ये किस तरह से है, वो एक सवाल अलग होता है, और एक झगड़ा करना अलग होता है। दीन के मामले में आज हर एक को शौक है झगड़े करने का, और जिस मजलिस में देखे वहां पे कोई ना कोई बहस शुरू की होती। तो ये दीन इस तरह से नहीं है, ये नहीं, इस हमारा ये हमारे लायक नहीं है, हमें ये जेब नहीं देता कि हम अल्लाह के दीन के ऊपर बहसें करें, उसके अहकामात के बारे में झगड़े करें, क्योंकि ऐसा इंसान फिर हदायत से महरूम रह जाता है, अमल से महरूम रह जाता है। झगड़ा करने से इंसान कभी भी राह नहीं पा सकता, तो झगड़े छोड़ दें, हमेशा ये सोचा करें मैं हूं क्या, क्या चीज हूं मैं, देखें एक नुतफा उसकी क्या हैसियत है, मैं लड़ती फिर रही हूं किस बात पे, गंदे पानी की बूंद से बने हुए, अगर अल्लाह ताला ने मुझे आज खड़ा कर दिया है, देखने वाला, सुनने वाला, चलने फिरने वाला, बोलने वाला बना दिया ना, तो मुझे ये जेब नहीं है देता कि आज मैं झगड़े शुरू कर दूं उस अल्लाह ताला के दीन के मुकाबले में। इतनी अकल आ गई है मुझे? तो फिर वो आयतें भी पढ़ लें कि जहां पे ये है कि अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हारी आंखें मूंद दे, अल्लाह चाहे तो जहां पे बैठे हो वहीं पे मसख कर दे, फिर क्या करेंगे? तुम तो कुछ भी नहीं थे, क्या चीज थे तुम, और उसने बना के तुम्हें खड़ा कर दिया, संवार दिया, इसलिए बातें बनाते हो। मां बच्चे को कहती है ना, तो तुम क्या थे, आज तुम्हें मेरे ऊपर बातें बनानी आ गई, मैंने तुम्हारे डायपर चेंज किए हैं, मैंने तुम्हारा गंद साफ किया है, तुम्हारी नाकें साफ की हैं, आज तुम मेरे ऊपर बातें बनाते हो। तो जिसका एहसान होता है ना, समझना चाहिए कि उसका कितना बड़ा एहसान है। और अल्लाह ताला तो वो रब है जिसने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आज हम जो भी हैं, जो भी हैं, हमारी अपनी कोई काबिलियत नहीं, हम क्या चीज़ थे, हम बैठे हैं, अगर हमारी जो शक्लो सूरत है, जो हमारी समझ है, जो हमारा चलना फिरना रहना बसना खाना पीना जो भी कुछ हमारे पास है, सब मेरे रब का दिया हुआ है, कोई भी हमारी अपनी काबिलियत नहीं है, तो फिर बढ़ बढ़ के बातें ना बनाया करें। उसके बाद तो बोलती बंद हो जानी चाहिए। अल्लाह एक नौकर भी कहता है, मैंने इस घर का नमक खाया हुआ, मैं नहीं कोई इनके खिलाफ बात कर सकता। एक नौकर को भी पता होता है, ये कैसे नौकर है अल्लाह के, जिनको ये ही नहीं पता कि ये जिस रब ने मुझे कहाँ से उठा के क्या बना के खड़ा कर दिया, आज मैं उसके ऊपर बात बनाऊं, ये कैसे नौकर है। हाँ, वदारा बलाना मसलम वना सिया खलका, देखो हमारे ऊपर मिसालें देता है और अपनी पैदाइश भूल गया, इसको हमारे पर मिसालें देनी आती हैं, बातें बनानी आती हैं, अल्लाह अकबर, और अपनी पैदाइश ही भूल गया। जैसे आप देखें, पहले वो बात आई ना पिछले सबक में कि अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही ना खिला देता इनको, अगर अल्लाह चाहता तो इनको खुद ही अमीर कर देता, अगर अल्लाह चाहता तो हम क्यों दें, हमें क्यों कहा गया कि इनके ऊपर हम स्पेंड करें, हम इनको खिलाएं जो गरीब है मिस्कीन है। अगर अल्लाह चाहता तो देखो ना वो मुझे नेक कर देता, अल्लाह ने ही नहीं चाहा, कभी कोई बात बनाते हैं। हाँ अल्लाह कैसे खड़ा करेगा, भुरभुरी हड्डियों से कौन निकाल के खड़ा करेगा, कैसे ये हो सकता है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, तरह तरह की बातें बनाते हैं। आज तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, मजलिसों में ये तक होता है कि क़यामत के दिन के लतीफ़े, हूरों के लतीफ़े, जन्नत जहन्नम के लतीफ़े, इतनी तरह की बातें, अंदाज़ा ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के ऊपर मिसालें देते हो, उसकी मिसालें बयान करते हो, अपने आप को भूल गए हो। قال من يحيي العظام وهي رميم, और कहता है कि कौन है जो जिंदा करेगा हड्डियों को जब वो भुरभुरी हो जाए। तो खास तौर पे तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि इंसान देखो अल्लाह पे कैसी बात बनाता है कि यानी ये कह देना कि कौन जिंदा करेगा, इसका मतलब ये है कि वो जिंदा नहीं कर सकता। बेसिकली वो ये कहना चाहता है इंसान कि अल्लाह ताला नहीं जिंदा कर सकता। तो अपने आप को भूल गए, अपनी पैदाइश भूल गए, तुम्हें कैसे बनाया अल्लाह ने, इतनी सी बोन से अगर तुम्हें इतना बड़ा इंसान बना दिया तो वो सीधा हड्डियों से भी वो बना सकता। अगर अपनी पैदाइश इंसान को याद रहे ना, तो फिर उसको ये समझ आ जाएगी कि कोई चीज भी अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है, ये समझ आ जाएगी फिर। लेकिन असल में वो अपनी अपनी असलियत भूल जाता है, और अल्लाह ताला को अपनी लिहाज से ना मतलब इवेल्युएट करता है, कंपेयर करता है अपनी कुदरत के साथ कि अगर मैं नहीं किसी को जिंदा कर सकते तो फिर अल्लाह भी नहीं कर सकता। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारी जो ताकत और कुव्वत है उसका क्या मुकाबला अल्लाह के साथ मुकाबले करते हो, तो तुम नहीं कंपेयर कर सकते। कुल युहयी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा वाहु अभी कुल्ल खल्क अलीम, वही पैदा करेगा, उनसे कह दे जिंदा वही कर देगा जिसने पहली दफा पैदा किया था। وہ تو خلق علیم, خلق سے یہاں پہ مانا ایک تو مصدر ہے نا, تو پیدا کرنا, اور ایک یہ بھی مانا ہے کہ بہت زیادہ جو تخلیق کا کام کرتا ہے, بہت زیادہ تخلیق کا کام کرنے والا, اور اپنی ساری مخلوق کا علم بھی رکھتا ہے, علیم بھی ہے. وہ تو ایسا ہے ہی, تو وہ کس طرح سے نہیں, کہ تم کہہ سکتے ہو کہ کس طرح نہیں پیدا کر سکتا, اس کو کیا مشکل ہے اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. اور انسانوں کے لیے پہلی دفعہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے, یا بہت دفعہ کوئی چیز پریکٹس میں آ جائے تو کہتے ہیں اب تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اب تو میرے لیے کوئی مشکل ہی نہیں, تو میں نے اتنی دفعہ کرتی رہتی. یہ انسانوں کے لیے ہے. وہ رب جس کے لیے پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا, اتنے سارے انسان اس نے نطفے سے پیدا کر کے کھڑے کر دیے, اب اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ ہڈیوں سے کھڑا کر دے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنائی سبز درخت سے آگ. یہ اب نا دلائل دیے جا رہے ہیں, اصل میں یہاں پر 10 دلائل دیے گئے ہیں جو انسان کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پہ قادر ہے. پہلی دلیل کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ بکلی خلق علیم, وہ اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے, تمام مخلوق کو جانتا ہے. یاد یہ بھی مانا کہ وہ بہت زیادہ تخلیق کرنے والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے. پھر وہی ہے جس نے درخت سے, سرسب درخت سے آگ کو پیدا کیا. اب اس کا یہ کیسے دلیل بنتی, اس لیے کہ جو گرین درخت ہوتا ہے نا وہ گیلا ہوتا ہے, اس کے اندر تری ہوتی ہے, وہ بھی خشک سے تو ٹھیک ہے آگ جل جاتی ہے, لیکن تر سے آگ کا جلنا یہ ایک یعنی عجیب سی بات لگتی نہیں ہے کہ یہ گیلا, اس میں پانی ہے, اس میں نمی ہے اور اسے آگ نکلتی ہے. ایک ایسا درخت ہوتا تھا عرب میں جس سے خاص طور پہ آگ پیدا ہوتی تھی, اس کو رگڑنے سے سبز درخت ہوتا تھا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ, تو تب تم اس سے تم جلاتے ہو, یعنی پھر تم اس سے اس آگ کو استعمال کرتے ہو, اسے آگ جلاتے ہو. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اسے آگ کو پیدا کرتا ہے. تو یہ ایک تیسری دلیل تمہارے لیے. پھر چوتھی دلیل کیا ہے کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, کیا وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, کیا وہ قادر نہیں ہے اس پہ کہ ان کے جیسوں کو پیدا کرتے. جس ہستی نے آسمان اور زمین کتنے ہیوج ہیں, اور آسمانوں میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کتنا کچھ ہے, کتنے بڑے بڑے ستارے سیارے موجود ہیں اور کیسے گھوم رہے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسپلن سے چلایا ہوا ہے, ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو انتم اشد خلقا ام السماء بناها, کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے یا آسمان, زیادہ بڑی پیدائش کس کی ہے, آسمان کی یا تمہاری؟ تو آسمان زیادہ بڑی چیز ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کر دیا, زمین کو تخلیق کر دے تو تم جیسوں کو نہیں کر سکتا, بھلا کیوں نہیں. وہ الخلاق العلیم, وہ پیدا کرنے والا ہے, زبردست خلاق ہے وہ, بہت زیادہ اس میں ایگزیجوریشن ہے, تخلیق کا ماہر, بہت ماہر ہے جو. انما امرهم, ایک اور دلیل دی جا رہی, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, وہ تو ایسا ہے کہ اس نے کوئی کام کرنا ہو تو وہ صرف کہتا ہے کن, ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ خلاق علیم بھی ہے, اس نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا, اور وہ صرف اس کو کوئی زیادہ مشکل کوئی یا اس کو کوئی تردد کرنے کی یا کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ صرف کسی چیز کا بھی ارادہ کرے, کسی چیز کا بھی, شیئن کوئی بھی چیز اس کا وہ ارادہ کرتا ہے نا, چاہے تخلیق ہے چاہے کچھ بھی ہے, بس صرف اس نے کن کہنا ہوتا ہے हो जा और वो हो जाता है। अब ये हमें समझाने के लिए कौन, वरना हम नहीं जानते, अल्लाह ताला का इरादा ही उससे ही वो चीज हो जाती है। अल्लाह अकबर, फसुबहान अल्लज़ी बियदिहि मलकूतु कुल्ली शई। और फिर देखें एक और दलील कि पाक है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है हर एक चीज की। जो बादशाह है उसके लिए क्या मुश्किल है, जिसके पास सारा कंट्रोल बादशाह, तो वो है जो एक तो दुनिया के बादशाह होते हैं ना, वो तो फिर भी कोई कमजोरी रखते हैं। एक अल्लाह ताला कुल कायनात का बादशाह है, मालिक है, उसके कंट्रोल में हर चीज है, ना उसने किसी से पूछना है ना किसी से इजाजत लेनी है, तो फिर वो जो चाहे पैदा करे, फिर क्या वो तुम्हें नहीं पैदा कर सकता। वइलैही तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। जब उसकी तरफ ही लौटाया जाना है तो फिर वो क्यों नहीं पैदा कर सकता। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन, तो फिर तुम्हें जरूर वो उठा के खड़ा करेगा। तो ये सब दलाइल हैं इस चीज के कि अल्लाह ताला ने उठाना है, अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदगी देनी है, वो जिंदगी जो दोबारा फिर कभी, जिसके बाद मौत नहीं आनी और जो कभी ख़त्म नहीं होनी, ये बता के अल्लाह ताला ने इंसान को यकीन दिला दिया कि किसी गलत फहमी में मुबतला ना रहना कि आज तक तो कोई आया नहीं तो कौन आ सकेगा, किसी ने आज तक तो बताया नहीं, ये हड्डियाँ इनसे कहाँ से कौन खड़ा हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, इससे किसी गलत फहमी का शिकार ना रहना, बल्कि यकीन कर लो कि अल्लाह ताला उठाएगा, खड़ा करेगा, सवाल करेगा। अगर सवाल ना होना हो तो आखरत का तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं, फिर क्या होना, फिर वहाँ पे क्या होगा। अगर अल्लाह ताला की ये बात सच्ची है तो वो भी सच्ची है, सारी सच्ची, वो हक है। तो ये इस सूरत की अहम मजामीन में से एक मजमून था, ईमानियात में से एक ईमान है, ईमान बिल आखिरा, तो इसका अकीदा मजबूत किया जा रहा है। जितना ये अकीदा मजबूत होगा उतना ही इंसान आखरत के लिए तैयारी करेगा, उतना ही इंसान अल्लाह ताला की मान के चलेगा, उतना ही इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर गुनाहों से बचेगा, उतना ही इंसान की ज़िंदगी गफलतों से दूर रहेगी। इसलिए जो आखरत का अकीदा है इसको जहन में बिठाना और फिर रीइन्फोर्स करते रहना और इसकी याद दहानी होते रहना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। ईमान भी दुनिया तो हमारा है, ईमान बिल आखिरा बड़ा ही कमज़ोर है, अगर है भी कहीं तो बड़ा ही कमज़ोर है। तो इसको मजबूत करने की ज़रूरत है कि इसी जिस्म के साथ, इसी रूह के साथ दोबारा खड़े होंगे, और अल्लाह ताला को परवाह नहीं है किसी के ज़र्रे कहाँ पे भी ज़मीन के अंदर बिखर चुके हों, उसने बस कहना है कौन, तो उन्होंने सारों ने मिल जाना। ये नहीं कि तो उसको तो शेर ने खा लिया, वो तो पानी में डूब गया, उसके तो ज़र्रे मतलब फिजा में उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। देखें जो हज़ारों सालों से लोग फौत हुए में, उनके तो हड्डियां भी मट्टी बन के, वो मट्टी भी कहीं उड़ गई, आंधियां आई, तूफान आए, कि मट्टी के जर्रे भी तो कहाँ से कहाँ चले जाते। वो हदीस देखें जिस बंदे ने कहा था कि अपने बेटों को कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी लाश को जला के एशेस को समंदर में बिखेर देना, उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने कुन फरमाया, वो खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने पूछा तूने क्यों ऐसा कहा था, उस बंदे ने कहा अल्लाह तेरे आगे जवाब दे ही के डर से। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने सिर्फ कुन कहना होता, इंसान सोच ले जितना मर्जी मैं एशेस बन जाऊं, मैं जर्रे बन जाऊं, पानी में कहां पे भी बिखर जाऊं, लेकिन अल्लाह ताला को कोई मुश्किल नहीं है किसी इंसान को दोबारा खड़े करने। असल फिक्र इस चीज की होनी चाहिए कि जब वो दिन आएगा तो मैं खड़ी होंगी कैसे, मैं कैसे फेस करूंगी अल्लाह ताला को, मैं क्या जवाब दूंगी। इस चीज की फिक्र छोड़ देंगे, अल्लाह ताला कैसे खड़ा करेगा, वो उसको खड़ा करना आता है, वो उसको जिंदा करना आता है इंसानों को। अल्लाह ताला इस अकीदे को हमारे अंदर पुख्ता कर दे। اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوار لیں اور اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.